ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपं कदा मह्यं ददाते स्वब्दकान्तिकम् वन्देहां श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप जो लोग पीछे लस्सी ले रहे हैं जल ले रहे हैं वो लोग भी भगवान का नाम बोल सकते हैं। एक बार बोलिए जरा जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे हर मंगलवार यहाँ भगवद गीता कार्यक्रम चल रहा है और सभी क्रम अनुसार श्लोक संख्या पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन में अपना रहे हैं। तो आज हम दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक पर चर्चा करने जाएंगे। यावनर्था उदपाने सर्वत्ता समलुप्त उदके तावना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावनर्थ उदपाने सर्वत्र समलुप्त उदके तावना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावनर्था उदपाने सर्वत्र समलुप्तोदके तावना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो इसका अनुवाद सब लोग साथ में दोहराएंगे। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और हमें इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस श्लोक में भगवान ने उदाहरण देते हुए अर्जुन को समझाया है कि हे अर्जुन, एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से पूरा हो जाता है। तो इस संसार में सबसे बड़ा जलाशय क्या है? हाँ जी, जलाशय समझते हैं क्या, जिसमें जल हो? तो सबसे बड़ा जलाशय क्या है? हाँ जी, समुद्र। कितना परसेंट समुद्र है पृथ्वी पे? 3/4। और 1/4 क्या है? पृथ्वी है। और उस 1/4 पृथ्वी के अलावा 3/4 इसमें जलाशय है, जल है। तो कुएं में ज्यादा जल होता है या समुद्र में ज्यादा जल? हाँ जी, समुद्र में ज्यादा। एक बार अकबर ने बीरबल से बोला कि बीरबल, आप हमें ये बताइए कि खुदा की खुदाई क्या होती है? हाँ, बोलते हैं ज्यादातर अल्लाह ताला की बड़ी कृपा है, खुदा की खुदाई है, देखो है। तो क्या होती है खुदा की खुदाई? ये जो भगवान ने सृष्टि की रचना करी, परवरदिगार ने सबको बनाया, ऐसे करके उस धर्म ग्रंथों में बोला जाता है खुदा की खुदाई। लेकिन अकबर की समझ में नहीं आया, बोले बोलते तो है लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो बीरबल से पूछे, तुम ज्यादा ज्ञानी हो बीरबल, थोड़ा बताओ ना। तो बीरबल बोले, ठीक है साहब, बताएंगे, थोड़ा समय दीजिए। 2 दिन के बाद बीरबल आए और कहा, अकबर जी चलिए आपको दिखाते हैं खुदा की खुदाई। लेकर गए, विशाल जलाशय समुद्र के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। कहा, ये देखिए, ये है खुदा की खुदाई। कहा, इसमें क्या है? ये तो समुद्र है, जलाशय है, इसमें ऐसा नया क्या है? खुदा की खुदाई क्या है? बोले, एक बताइए, एक जल को भरने के लिए पहले खोदना पड़ता है, फिर जल भरा जाता है। तो इस पृथ्वी पे 3/4 जल है, तो उसके लिए खुदा ने कितनी खुदाई की होगी जिसके अंदर इतना जल भरा है? तो ये है खुदा की खुदाई। ना ये आपके पिताजी ने खोदा है, ना मेरे पिताजी ने खोदा है, ये तो खुदा ही खोद सकता है। और वो खुदा कौन है, क्या है उसका नाम? कृष्ण। तो सारे धर्म ग्रंथों में इस बात की चर्चा नहीं हुई है कि भगवान कृष्ण है। कुरान कहती है कि मोहम्मद साहब अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं। अल्लाह के पैगंबर, पैगंबर मतलब मैसेंजर। तो अल्लाह कौन हुआ? वो तो नाम पता नहीं उनको, अल्लाह ताला, अल्लाह के ऊपर ताला लगा रखा है, नाम नहीं, चाबी नहीं उनके पास। अल्लाह है, अल्लाह का मतलब पता है क्या होता है? सर्वशक्तिमान। अल्लाह शब्द का अर्थ देखें हिंदी में, अल्लाह उर्दू शब्द है, अल्लाह शब्द को हिंदी में देखें उसका मतलब है सर्वशक्तिमान। हाँ, और क्रिश्चियन हमारे ईसाई भाई पढ़ते हैं बाइबल, तो बाइबल में बताया गया जीसस, यीशु मसीह कहते हैं, मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं भगवान का पुत्र। तो भगवान कौन, वहां पे भी नहीं पता। लेकिन गीता में भगवान ने कहा, सर्व योनिषु कौन्तवे, सर्व योनिषु कौन्तवे, हे कुंती पुत्र, जितनी भी योनियां हैं, सर्व योनिषु कौन्तवे, अहम बीज पदा पिता, मैं ही सबको बीज प्रदान करने वाला पिता। अब एक में बेटे का ज्ञान है, एक में एक दूत का ज्ञान है, और एक में पिता का ज्ञान है। तीनों ज्ञान जो है वो एक ही चीज सिखाना चाह रहे हैं, पर अलग अलग समय पर काल क्रम परिस्थिति के अनुसार उस ज्ञान को दिया गया। अच्छा, भगवत गीता का ज्ञान कब दिया गया? कुरुक्षेत्र के मैदान में पहली बार नहीं दिया गया, कई लोग सोचते पहली बार। भगवान ने अर्जुन को कहा, एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषोविदम सा काल ने हम महता योगा नष्ट परंतपा, हे योगी, नष्ट हो जाने से, ज्ञान नष्ट हो जाने से मुझे बार बार आना पड़ता है और बार बार इस ज्ञान को स्थापित करना पड़ता है। ये ज्ञान मैंने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य के पुत्र विवस्वान को भी दिया था, ठीक, ऐसे भगवान ने कहा। इसका मतलब ये ज्ञान तो करोड़ों सालों से चला। अच्छा, ईसाई धर्म का ज्ञान कब प्रकट हुआ? 2017 वर्ष पूर्व, अभी 2017 चल रहा है इंग्लिश कैलेंडर, तो 2017 वर्ष पूर्व अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ईसा मसीह का, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, एसी बीसी बोलते हैं। तो क्राइस्ट कब आए? 2017 साल पहले। और मोहम्मद साहब कब आए? हिजरी कैलेंडर देखेंगे तो 1417 वर्ष चल रहा है, मतलब 1417 साल पहले है। तो एक ज्ञान जो कि करोड़ों करोड़ों वर्ष से है, एक ज्ञान जो कि कुछ समय के लिए दिया गया और एक ज्ञान कुछ बाद में दिया गया, तो ये ज्ञान जो है वो सबसे पुराना ज्ञान कौन सा हो गया? हाँ जी, गीता का ज्ञान, भागवत ज्ञान, जिसे कहते हैं सनातन धर्म। अभी लोगों ने सनातन धर्म का मतलब समझते हैं जिस मंदिर में मॉल हो, मॉल समझते हैं ना, मॉल के अंदर कई दुकानें होती हैं, आप अपनी मर्जी की जीन्स खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे जीन्स के ब्रांड होते हैं। माताओं को सूट खरीदना है तो कई प्रकार के सूट के कपड़े की दुकान है, इसमें जाएंगे पसंद नहीं आएगा, फिर दूसरे में जाएंगे इसमें पसंद है। ज्वेलरी की दुकान है तो 5-6 ज्वेलरी की दुकान है। इसी तरह से सनातन धर्म का मतलब लोग समझते हैं जहां पर जैसी इच्छा जतो मतः ततो पतः, जैसी इच्छा वैसा भगवान बना लो, इसलिए 33 करोड़ देवी देवता बना लिए लोगों ने, इसलिए ये सनातन धर्म है क्योंकि यहां भंडार है। गलत। सनातन शब्द का मतलब है जो कभी समाप्त नहीं होता, सनातन, जिसका कोई अंत नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं बता सकता। तो आप बता सकते हैं भगवद्गीता ज्ञान भगवान ने पहली बार किसको दिया? ये तो पहली बार थोड़ी दिया, भगवान ने कहा करोड़ों वर्ष पूर्व भी दिया था, ये नहीं कहा पहली बार दिया था, तो पहली बार किसको दिया? हाँ जी, व्यासान को पहली बार नहीं दिया है। हाँ, ब्रह्मा जी को दिया पहली बार, कौन बता सकता है पहली बार दिया? उससे पहले लक्ष्मी जी को दिया हो, उनकी पत्नी है। ये श्री संप्रदाय के महान आचार्य रामानुजाचार्य, तो श्री संप्रदाय को प्रारंभ किया भगवान ने। इस संसार में कलयुग में 4 संप्रदाय हैं, जानते हैं आप? इन 4 संप्रदायों से ही ज्ञान प्राप्त करने पर आपका ज्ञान पूर्ण माना जाएगा। अगर अपनी मर्जी से किसी बाबा जी से कहीं जाकर के इधर उधर आपने और ज्ञान को प्राप्त किया तो पूर्ण ऑथेंटिक ज्ञान नहीं है। ऑथेंटिक मतलब पारंपरिक ज्ञान नहीं है, पारंपरिक ज्ञान है जो कृष्ण से चली आ रही परंपरा हो। तो 4 संप्रदाय हैं। कृष्ण से आने वाली पहली संप्रदाय है, कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया लक्ष्मी जी को, तो उसको बोलते हैं श्री संप्रदाय। उस श्री संप्रदाय को कलयुग में दोबारा स्थापित किया रामानुजाचार्य ने। उसके बाद दूसरी ज्ञान है, उन्होंने ज्ञान दिया 4 कुमारों को। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है, मानस पुत्र, चतुर कुमार, सनक, सनंदन, सनादि कुमार। उन 4 कुमारों को ज्ञान दिया, वो बन गई कुमार संप्रदाय। उस कुमार संप्रदाय को कलयुग में स्थापित किया निम्बार्काचार्य जी ने, है ना। आप जाएंगे वृंदावन तो आप देखेंगे निम्बार्काचार्य द्वार लिखा है, तो द्वार निम्बार्काचार्य कौन है? ये निम्बार्काचार्य कुमार संप्रदाय के कलयुग के आचार्य हैं जिन्होंने इसको स्थापित किया। तीसरी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। रुद्र शिवजी जो है उनको ज्ञान प्रदान किया भगवान कृष्ण ने, भागवत का ज्ञान, गीता का ज्ञान प्रदान किया। वो ज्ञान को आगे लेकर के कलयुग में एक आचार्य है जिनका नाम था विष्णु स्वामी। वो विष्णु स्वामी जी ने उस ज्ञान को कलयुग में वापस स्थापित किया। जो टूट जाती है परंपरा, आचार्यगण उसको स्थापित करते हैं अपने आचरण के द्वारा और अपनी शिक्षाओं के द्वारा। और एक ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, तो वो बन गई ब्रह्म संप्रदाय। उस ब्रह्म संप्रदाय में आचार्य आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य उड़ीपी में प्रकट होते हैं और वो प्रकट होकर माधवाचार्य इस ज्ञान को, ब्रह्मा जी के ज्ञान को दोबारा प्रतिस्थापित करते हैं। और इसी माधवाचार्य परंपरा के अंदर आते हैं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, और किसी संप्रदाय में नहीं आते हैं, सिर्फ ब्रह्म माधव संप्रदाय में आते हैं। तो जब ब्रह्म माधव संप्रदाय, माधव मतलब माधवाचार्य, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, तो ब्रह्म माधव संप्रदाय में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो ये संप्रदाय क्या बन जाती है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय मतलब गोरे रंग के भगवान जहां प्रकट हुए हैं, कृष्ण गोरे रंग के आए, तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो इस्कॉन जो है वो कौन से संप्रदाय का है? हाँ जी, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का जो है ये इस्कॉन केंद्र, प्रभुपाद जी जिस परंपरा में हमको जोड़ रहे हैं, ये ज्ञान सबसे पहली बार ब्रह्मा जी को दिया गया। तो ब्रह्मा जी को ये सबसे प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ है भगवान से। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? अरे प्रथम बार जिसको ज्ञान मिल रहा है वो बता सकता है कि असली टीचर कौन। और जैसे आप हमसे सुनकर जाएं, जाकर अपने डिपार्टमेंट में लेक्चर देने लग जाएं, तो बोलेंगे अच्छा तुम तो दे रहे हो, सुनकर कहां से आ रहे हो? कह रहे वहां पर आते हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु, वो मंगलवार को बताते हैं ज्ञान। हम कहां से दे रहे हैं ज्ञान? बोले जी ये अपने गुरु महाराज से ज्ञान सुनकर आ रहा है। वो महाराज ने ज्ञान कहां से लिया? बोले प्रभुपाद जी से ज्ञान लिया। प्रभुपाद जी ने कहां से लिया? बोले अपने गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज से लिया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहां से ज्ञान लिया? बोले अपने गुरु जो गौर किशोरदास बाबा जी से ज्ञान लिया। गौर किशोरदास बाबा जी ने कहां से लिया? बोले अपने गुरु भक्ति विनोद ठाकुर से लिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहां से लिया? बोले अपने गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से लिया। उन्होंने कहां से लिया? ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, तो 500 वर्ष की तो परंपरा रटी हुई है हमको, बाकी की लिखी हुई है गीता के अंदर। तो ये ज्ञान परंपरा से कृष्ण तक जुड़ता है। अभी किसी गुरु से आप मिलते हैं, जैसे आप पंडित जी, गुरु जी मंदिर के कहते हैं, उनसे बोलिए 4 गुरुओं के नाम बताइए अपनी परंपरा के। आपके घर में पूजा करने, यज्ञ करने, उनसे बोलिए 4 गुरु के नाम बताइए। आप कह रहे ना कृष्ण भगवान ने, 4 गुरु के नाम बताइए जिन्होंने देवी को प्रकट किया, जिन्होंने प्रथम बार ज्ञान देवी जी को दिया, देवी जी की सृष्टि की रचना में देवी जी आई, कैसे आया? नो नॉलेज, सब 0/0 है। फिर भी लोग अपने आप को बोलते हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। तो शास्त्र के अनुसार हम हर चीज की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि संसार का सारा ज्ञान कैसा है? कुएं के समान है। कुएं का पानी ज्यादा होता है, समुद्र का ज्यादा होता है? हाँ जी। तो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है उदपाने, जलकूप। जितना सारा प्रयोजन होता है वो जलकूप, जलकूप के समान है। तो इस संसार में जितने भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के कुएं हैं, उसको बोला जाता है कर्म कांड के कुएं। हाँ, कर्म कांड के। श्रील प्रभुपाद बताते थे कि गांव में अलग अलग कुएं पे अलग अलग काम होता था। आपने देखा, किसी ने कुएं देखे हैं आज तक गांव में? अलग कुएं पे अलग काम। जैसे धोबी का कुआ, बोले ये कपड़े धोने का कुआ है, वहां पानी पिएंगे क्या? एक कुआ है जहां पर भैंस गाय चरती है, पानी पीती है, वहां पिएंगे पानी आप? लेकिन एक पानी पीने का कुआ है। और कई लोगों ने उसको जातिवाद में बांधकर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र के कुएं भी अलग कर दिए। लेकिन समुद्र में कभी सुना ये धोबी का समुद्र है, ये गाय का समुद्र है, ये जानवर का समुद्र है, ये आदमी का? सुना ऐसा? इसका मतलब समुद्र सबके लिए है, उसमें कोई जातिवाद, कोई राष्ट्रवाद, कोई नहीं है, जो कुछ भी है सब समान है। लेकिन कुएं में सब कुछ है, इसलिए भगवान ने यहां कहा उदपाने। उदपाने मतलब इस संसार का जो कर्म कांड ज्ञान है वो जल कुएं के समान है, पर मेरा जो गीता का ज्ञान है वो कैसा है? समुद्र के, समुद्र के समान है। उदक मतलब होता है चरणों से निकलने वाला जल, है ना? विष्णु उदक मतलब चरणामृत, विष्णु उदक। भगवान के कई लोग प्रश्न उठाते हैं, अरे मंदिरों के अंदर इतना दूध दही बेकार करते हैं, इससे अच्छा गरीबों को क्यों नहीं खिला देते? कौन से मंदिर में जी बर्बाद होते देखा है? और जिस मंदिर में बर्बाद होता है वो मंदिर ही नहीं है। जो उन मंदिरों में भगवान का अभिषेक करने के बाद में वो जल भक्तों के बीच में वितरित किया जाता है, तो कभी भी जल वेस्ट नहीं किया जाता। उसकी एक बूंद जमीन पर भी गिर जाए तो अपराध लगता है, कई जन्मों तक नरक में जाना पड़ता है जो आदमी चरणामृत की एक बूंद को नीचे गिराता है। तो कौन वेस्ट करता है? वही वेस्ट करते हैं जो कर्म कांडे ज्ञान को जानते हैं, भागवत ज्ञान को नहीं जानते हैं। तो हमें उन कुएं के ज्ञान को छोड़कर समुद्र के ज्ञान को पकड़ना है। कहते हैं चरणामृत जो है भगवान के चरण से निकलने वाला अमृत, वो व्यक्ति को करोड़ों करोड़ों व्याधियों से दूर कर सकता है, बीमारियों से। विष्णु पाद उद्गम पितवा पुनर्जन्मना विद्यते। दोबारा जन्म भी नहीं होता उस व्यक्ति का जिसने विष्णु से निकलने वाले चरणामृत को पान किया है। कितना महानता है। लेकिन वो ये सोचे मैं चरणामृत ले रहा हूं, चरणों का अमृत ले रहा हूं, है ना? और उसके जीवन में कोई बीमारी भी नहीं होगी उसको, उसके जीवन में बीमारियां भी नहीं आती हैं। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु भी हट जाती है। मतलब अकाल मृत्यु वैसे तो होती नहीं है, लेकिन ये शब्द चुना गया अकाल मृत्यु। अकाल मतलब बिना समय के हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस व्यक्ति की मृत्यु लिखी है तभी होती है, लेकिन फिर भी भौतिक दृष्टि से उसको बोल देता है अरे अभी तो 20 साल का बच्चा मर गया, अकाल नहीं, ये काल का समय नहीं था, अकालन उसकी मृत्यु हुई। तो ये अकाल मृत्यु में इसको संबोधित किया था, परंतु अकाल मृत्यु नहीं है वो, तो उसकी मृत्यु निश्चित थी तो मृत्यु हुई है। तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सारी व्याधियों का विनाश भी कर देते हैं। विष्णु पाद उद्गम पितवा, जो विष्णु के चरणों से निकलने वाले उद्गम को पितवा है, पिता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसके संसार में जन्म भी नहीं होता। इतनी सारी लस्सी पी हमने जीवन में, और इतना सारा किलो किलो टन टन दही पी गए, लेकिन पुनर्जन्म होगा अगर वो विष्णु चरणामृत उसमें मिला हुआ नहीं होगा। तो इसलिए मंदिरों में जो अभिषेक होता है वो चरणामृत पिलाया जाता है लोगों को। ये भ्रांत धारणा है कि दूध दही वेस्ट करते हैं वैष्णव धर्म के लोग, वो लोग करते हैं जो कुएं के समान ज्ञान रखते हैं, समुद्र के समान ज्ञान है उसमें नहीं। तो समुद्र ईसाई का कोई अलग समुद्र होता है, मुसलमान का अलग होता है। इसलिए सनातन धर्म का मतलब है जो धर्म आत्मा का ज्ञान देता है और जो ज्ञान ये बताता है कि इस आत्मा की एक ही योग्यता है कि पूर्ण की सेवा करना। अंश का क्या काम है? पूर्ण की सेवा। आपका हाथ का क्या कर्तव्य है? आपकी सेवा करना। जिस दिन आपका हाथ आपका काम करना बंद कर दे तो वो हाथ कहते हैं पैरालाइज्ड हो गया है, अब ये बेकार हो गया है, क्योंकि अब मेरा काम नहीं करता, ऐसे ही लटका रहता है पैरालाइज्ड। तो अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएंगे? पैरालाइज्ड। वी आर लाइक अ पैरालाइज्ड। लगेगा चलता है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे वो व्यक्ति मृत है जो कृष्ण के बारे में बोल नहीं सकता। मृत, डेड बॉडी। जीव है और जीवन है। जीवन का मतलब ही है कि ये कृष्ण का अंश है तो कृष्ण के बारे में बोले, अगर नहीं बोल रहा है तो मृत है, मृत समान है। जिस मस्तक पर तिलक नहीं है वो मस्तक शमशान घाट के समान है, क्योंकि ये मस्तक पर तिलक का मतलब है यहाँ केशव विराजमान है, और जहां कृष्ण नहीं है वहां मृत है व्यक्ति। तो ये शमशान भूमि है जहां तक मस्तक पर तिलक नहीं है। तो आप सबको तिलक लगाना चाहिए। वो मना करता तिलक लगाने का ऑफिस के लोग, मना कर रही है, कोई मना नहीं, तो फिर क्यों नहीं लगाते हैं आप तिलक? अभी इतने समय से आ रहे हैं, 2 साल 3 साल से कथा सुन रहे हैं, ये प्रभु जी भी एम्स में हैं, ये लगाइए देखिए, पूरा तिलक लगाते हैं, कंठी माला भी पहनते हैं। आपको भक्त नहीं बनना क्या इस जीवन में? कितने लोग चाहते हैं कि हम भक्त बने, भगवान के सच में भगवान की कृपा मिले, तो अगले मंगलवार को तिलक लगा के आइए, और नहीं ला सकते हैं तो यहाँ प्रभु जी तिलक रखेंगे आपके, सबके लगा देंगे, ठीक है? एक दिन तो लगाइए कम से कम। इस तिलक की इतनी महानता आपको वर्णन करें आपको सुनकर आश्चर्य होगा। एक व्यक्ति था, वो कहता था इस तिलक से क्या होता है, ये सब तिलक फालतू है, ये सब तो दिखावा है भक्ति का, मन में होनी चाहिए। अर्जुन कहता है चंचलम ही मना कृष्णा। अर्जुन कहता है भगवान मेरा मन चंचल है तो मन में कैसे भक्ति करेंगे? मन में भक्ति कर नहीं सकते और दिखावे पे भक्ति होती नहीं है, तो भक्ति करते नहीं, इसका मतलब जीरो स्कोर है हमारा। तो एक राजा थे, वो राजा इतने द्वेषी थे, इतने पापी थे, उन्होंने जीवन में 4 नियम है इस्कॉन के, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना, नशा नहीं करना। वो चारों को एकदम 100% तोड़ते थे। पर स्त्री पुरुष संग में ही रहते थे, नशा पान रोज करते थे 100-100 बार, मांसाहार के अलावा कुछ खाते नहीं थे, और जुए में तो लिप्त रहते थे। ऐसे राजा का किसी दूसरे राजा से द्वेष हो गया, उसने कहा मैं इनकी गर्दन काट दूंगा। तो घोड़े पर सुबह सुबह आया, जब राजा टहलने के लिए जाते थे तो राजा टहल रहे थे एक जल कुएं के पास में, संबंध छोटा सा तालाब था, उस तालाब के किनारे एक भक्त बैठकर तिलक लगा रहा था, यही वाला गोपी चंदन तिलक। तिलक लगाते हुए पीछे से राजा का जो द्वेषी दूसरा राजा था वो घोड़े पर आया, उसने तलवार से इनका मस्तक काट दिया, गर्दन ही काट दी। जब काटी तो उसकी गर्दन ऐसे लुढ़कती हुई नीचे गिरी तो वहां पर जो तिलक लगा रहा था उसकी कुछ बूंदे जमीन पर गिर रही थी। तो मरने से पहले, जीव के प्राण छूटने से पहले इसके मस्तक पे होता है ना, शरीर से अलग हो जाने पर भी कुछ देर तक जान रहती है, उतनी देर में तिलक लग गया। लेकिन काम कैसे थे, अपना शरीर छोड़ने के बाद में यमदूत आए, यमदूत बोले चलो महाराज, राजा तो थे लेकिन काम सारे आपने गंदे किए। राजा का कर्तव्य, लीडर का कर्तव्य है कि वो सभी अपने अनुगतों को भगवान की सेवा में लगाए और खुद भी लगे, वो लीडर सही लीडर है। फेक लीडर तो बहुत सारे हैं, ना खुद भगवान से मतलब, ना नीचे वालों को भगवान है, मैं और मेरा, चाहे वो राष्ट्र की बात हो चाहे किसी की भी बात हो, सही सही मायने में वो सही व्यक्ति है जो कृष्ण शरणों में सबको लेकर आए। तो राजा ने ऐसा नहीं किया था। यमदूत बोले हर एक व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसको अलग अलग नरकों में प्रताड़नाएं मिलती हैं। भागवतम के 5वें स्कंद के 29वें अध्याय में 28 नरकों का वर्णन है, हर काम का अलग नरक। ऐसा नहीं जिसने चोरी की सब वहीं मिलेंगे, मर्डर वाला भी वहीं मिलेगा, हर केस की सजा अलग अलग। पिक पॉकेटर जो होगा, जिसने जेब कतरी है उसका अलग इलाज है, जिस व्यक्ति ने मर्डर किया उसका अलग इलाज है, उसको फांसी की सजा है। ऐसे ही जिन व्यक्तियों ने सिर्फ छोटी मोटी हरकतें करी हैं उनको छोटे मोटे नरकों में जाना पड़े, जिसने बड़ी हरकत की है उसको बड़े नरक में कई वर्षों तक रहना पड़े। तो एक नरक है जिसका नाम है कुंभी पाकम, कुंभी पाकम मतलब होता है पकाने वाला ना, कुंभी पाक, कुंभी मतलब घड़ा, बड़े से घड़ा, बड़े से कढ़ाई, जैसे कुंभ, कुंभ होती है कढ़ाई, कड़ा घड़ा, और कुंभी होती है कढ़ाई, कुंभी पाकम, कुंभी में पकाया जाएगा जहां पे। तो कुंभी पाकम नाम के नरक में उसको ले गए। अब राजा को शरीर तो वहीं छूट गया था, उसकी आत्मा को यातना शरीर में डाला और यातना शरीर में ले जा रहे हैं, उसको ले जाकर के कढ़ाई में डाल दिया। अभी कुंभी पाकम का तेल कभी ठंडा नहीं होता है, और जैसे होटलों में होता है ना, हमेशा तेल गर्म रहता है। कोई भी नया कस्टमर आया तो दो चार पूड़ी निकाल देते हैं, है ना, पुराने वाले ऑयल में दोबारा रीफ्राई करते रहते हैं। तो ऐसे वहां पर इतने लोग गंदा काम कर रहे हैं, वहां तो कभी कढ़ाई उतरती नहीं है। 24/7 की सर्विस है वहां पे, 24 घंटे सातों दिन वहां पर तो चल रहा है, और आते हैं 100-100, 200-200 एक एक बार में आ रहे हैं, सब डाल दिए जाते हैं, हजारों सैकड़ों लोग जा रहे हैं रोज, तो गलत काम तो कर रहे हैं ना। कृष्ण भजन नहीं होता, आलसी इतने हैं, भगवान का मत, भगवान के प्रति इतना द्वेष है, अरे कृष्ण कहां से भगवान हो गए, स्थाप, अरे इस्कॉन वाले बोलते हैं, ये तो गीता पता नहीं किसने लिख दी, कुरुक्षेत्र तो कभी था ही नहीं, ये सब बनाई हुई बातें हैं, ये कहां जाएंगे सारे लोग। कुंभी पाकम, तो कुंभी पाकम में जा रहे थे और ले जाके राजा को जैसे ही डाला, कढ़ाई का तेल ठंडा पड़ गया। अभी यमदूत हैरान हो गए, बोले कढ़ाई का तेल ठंडा हो गया, चलिए चलिए यमराज के पास। यमराज जी, पहला केस आया है, कस्टमर को लाकर जैसी कढ़ाई में डाला, कढ़ाई का तेल ठंडा हो गया। अरे तो बड़ी खतरनाक बात है, यमराज भी टेंशन में, अरे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे पहली बार ठंडा हो गया तेल, आदमी को डालते थे आदमी को बोलता था तेल ठंडा हो गया। बोले आप सही व्यक्ति को तो लाए, कहा वही राजा था, एकदम चार नियम तोड़ता था पूरे, भागवत विधि के अनुसार कभी जीवन नहीं जिया, द्वेषी गंदा आदमी। अच्छा चलो चेक करते हैं, तो उसका पूरा रिविजिट किया गया, जाकर के ट्रैक किया, सारी उसकी हिस्ट्री पढ़ी, इतिहास देखा, कहाँ व्यक्ति, कहाँ का व्यक्ति, जाकर पता चला इस व्यक्ति ने क्या किया था कि जब उसका मस्तक जमीन पे गिरा तो गोपी चंदन तिलक उसके मस्तक पे लगा। कहते हैं अगर ये मस्तक पर एक बार लग जाए तो पूरे पूरे पूर्व जन्म में भी किए गए पाप क्षण भर में समाप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये तिलक है ये कोई चंदन तिलक नहीं है, ये गोपियां जो भगवान कृष्ण की भक्त हैं, परम भक्त हैं, जिनकी कैटेगरी में कोई भी नहीं आ सकता है, यहां तक कि उनकी खुद की पत्नियां भी नहीं आ सकती हैं, उन गोपियों की चरण की रज मतलब उनकी धूली से बना हुआ चंदन गोपी चंदन तिलक कहलाता है। इसको लगाने पर क्या करेंगे, कृष्ण सारे पापों से मुक्त कर दें, लेकिन उसके बाद दोबारा ना करें। हम क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं फिर पाप करते हैं, फिर तिलक लगाते हैं फिर पाप करते हैं, फिर मिटा भी देते हैं। अब बात ऐसी है कि देखना पड़ेगा जब शरीर छूट रहा है उस समय लगा था कि नहीं लगा था, इसलिए हमेशा लगा के रखना चाहिए, कभी भी छूट सकता है, है? पता थोड़ी है, निकले यहां से मोड़ पर ही एक्सीडेंट हो गया, मर गए, क्या होगा, या फिर हार्ट अटैक आ गया, किसको पता है, और तिलक ना हुआ तो चार प्रकार के तिलक हैं, है? सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी तिलक भी होते हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के तिलक भी होते हैं। शूद्र मतलब वो जो सारी प्रजातियों का सेवा करने वाला है, वो लगाता है काला तिलक, देखते हैं काले रंग का तिलक। तो जितने भी लोग यम शमशान की पूजा करते हैं या फिर मृत्यु संजीवनी विद्याएं सीखते हैं, टोटके करते हैं, ऐसे व्यक्ति काला तिलक लगाते हैं, क्योंकि उनकी जाति उनके ज्ञान के हिसाब से वो शूद्र है। जो व्यक्ति क्षत्रिय होता, वैश्य होता है, वैश्य मतलब जो धन उपार्जन के लिए व्यापार करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करने वाले व्यक्ति को इजाजत है शास्त्रों में, क्योंकि तिलक मात्र से ही पहले होता था, अभी तो विजिटिंग कार्ड है, मोबाइल नंबर है, फेसबुक है, बहुत सारी चीजों से पता चलता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। पहले दूर से पता चलता था ये तिलक देखकर आपका प्रोफेशन क्या है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति नहीं है, ये प्रोफेशन है, वर्ण है। वर्ण को अंग्रेजी में प्रोफेशन, कैसे प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का लैब कोट ना हो तो कोई पहचानेगा नहीं कि डॉक्टर है, नर्स ना लैब कोट पहने तो पहचानेंगे नहीं ये मेडिकल की है, है ना। और इंजीनियर हो, इंजीनियर के हाथ में कोई पेचकस ना हो, उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर ना हो तो वो नहीं पता चलेगा इंजीनियर है मैकेनिक है, है? तो इसी तरह से डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप ना हो तो पता नहीं चलेगा डॉक्टर है, नर्स के हाथ में सुई ना हो तो पता नहीं चलेगा ये नर्स है। तो इसी तरह से ब्राह्मण के पास में ज्ञान ना हो और नाम के पीछे लिख दे शर्मा जी, लेकिन शर्मा जी को प्याज खाने में शर्म नहीं आती, तिलक भी लगाने में लगाते नहीं फिर भी शर्म नहीं आती, तो फिर ऐसे मतलब आपके लिए नहीं कह रहे हैं, ऐसे मतलब विशेष करके ब्राह्मण ऐसे हैं, आप लोग तो अच्छे हैं, आप भागवत सुनने आते हैं, तो ऐसे लोग हैं, नाम के पीछे लिखते हैं चतुर्वेदी, हम भी चतुर्वेदी से ही हैं, जाति से, वो चतुर्वेदी जिन्हें चारों वेद कभी पढ़े ही नहीं है, नाम टाइटल लिखते चतुर्वेदी और सारे काम उल्टे करते वेद के अनुसार। त्रिवेदी जिन्होंने तीन वेद कभी नहीं पढ़े, द्विवेदी जिन्होंने दो वेद कभी नहीं पढ़े, वेदी साहब तो वेद पढ़ते ही नहीं है। हा? तो ऐसे देखिए, आप पूछिए आप वेदी लिखते हैं तो वेद पढ़ा आपने, चतुर्वेदी चार वेद पढ़े, द्विवेदी ने दो वेद पढ़े, तो प्रोफेशन है ये। वर्ण मतलब प्रोफेशन। इंजीनियर को इंजीनियरिंग ना आती हो तो डिग्री देगा कोई, इंजीनियर की दुकान में बिठाएगा कोई, कंपनी में रखेगा, और लिखा है कंप्यूटर इंजीनियर, बोले कंप्यूटर, बोले वो तो आता नहीं, और नाम लिखा है ब्राह्मण तो आना चाहिए ब्राह्मण का। तो उसी तरह से तिलक से व्यक्ति का पता चलता था ये कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। शूद्र लगाएगा किस रंग का तिलक? काला। जो वैश्य होगा वो लगाएगा पीला तिलक। पीला तिलक लगाते हैं जो वैश्य होते हैं। जो क्षत्रिय होते थे, राजा आपने देखा होगा जब लड़ाई के लिए जाते थे तो किस तिलक लगाते थे? लाल तिलक लगाते। और जो ब्राह्मण होते थे वो कैसा तिलक लगाते थे? ऐसा लाइट येलो कलर का, ये जो तिलक है ब्राइट व्हाइट या लाइट क्रीम कलर। तो ये जो तिलक है ये ब्राह्मण का सूचक है, ये ब्राह्मण है। तो कोई लाल तिलक लगा रहा है तो उसके अंदर कौन सी भावना जागृत रहेगी? क्षत्रिय। क्षत्रिय क्यों? ये तीन गुणों में भी बांटा है। शूद्र पूर्ण पूर्ण कैसा रहता है? तमोगुणी। यहां पर जो काला तिलक लगा रहा है उससे पूछने की जरूरत नहीं है कि आप क्या खाते हो, आप क्या करते हो, देख तिलक देख के पता चल रहा है कि क्या करता है, इसकी भावना किस लेवल की है। जो व्यक्ति पीला तिलक लगा रहा है उसमें रजोगुण और तमोगुण दोनों मिक्स हैं, कभी वो रजोगुण में रहता है कभी तमोगुण में रहता है। जिस व्यक्ति ने लाल तिलक लगाया उसमें रजोगुण ही रजोगुण है, जिस व्यक्ति ने क्रीम तिलक लगाया वो सत्वगुणी व्यक्ति है। तो ये तिलक से भी आपके चेतना में फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमको ये लाइट क्रीम कलर का तिलक ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये तिलक कोई साधारण तिलक नहीं है। इस तिलक के बीच में भगवान कृष्ण के चरण है, इसको विष्णु चरण कहते हैं। इसके इधर ब्रह्मा जी रहते हैं, इधर शिव जी रहते हैं, और इसके नीचे ये जो है ये तुलसी का पत्र चरणों में अर्पित किया की जाता है। हाँ, तो ये यहाँ पर भगवान केशव रहते हैं, इसलिए तिलक लगाते वक्त बोलते हैं ओम केशवाय नमः। हाँ? तो ऊर्ध्व पुंड तिलक को बोलते हैं, ऊर्ध्व पुंड है ना। तो ये तिलक इतना महान है, इतना महान तिलक है कि पहले जब भगवान ने इस संसार में आत्माओं को प्रकट किया तो सुर और असुर सभी ऐसा तिलक लगाते थे, भाई भगवान के अंश थे उन्हें मालूम ही नहीं था। तो एक बार जब उनकी प्रवृत्तियां बदलने लग गई, तिलक तो लगाते थे बाहर से लेकिन प्रवृत्तियां असुरी हो गई, उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र को छोड़ दिया। छोड़ा तो जाकर के चक्र किससे टकराया? असुरों से, असुरों से टकराया। तो दूर से चक्कर खाता रहा लेकिन गर्दन नहीं काटी। बोला क्यों? बोले अरे आप विष्णु चरण है यहाँ पर, मैं कैसे चल जाऊं? वापिस आके सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर बोला, सुदर्शन चक्र भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। आप देखिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा साथ में एक डंडा रहता है, उसका नाम है सुदर्शन, सुदर्शन भगवान है। तो सुदर्शन भगवान ने जाकर जो चक्र का रूप लेते हैं भगवान की सेवाओं में, सुदर्शन भगवान ने जाकर बोला हे भगवान सभी आपका एक तिलक लगाते हैं, सुर भी और असुर भी, देवता भी और राक्षस, तो कैसे मैं इनकी गर्दन काटूं? तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो अपने भक्त को बोलता हूं कि इनका तिलक बदलवाए। तो उन्होंने किसको बोला? ऐसे काम के लिए शिव जी को बुलाया जाता है, भोलेनाथ है ना, भूतनाथ भी है तो भूतों के नाथ है। तो उन्होंने कहा शिव जाकर इनका तिलक बदल दो, मेरा चक्र इनकी गर्दन नहीं काट पा रहा। शिव जी बोले कोई बात नहीं। शिव जी ने परंपरा बदल दी, शिव जी ने कहा ऐसे तिलक नहीं लगाएंगे, ऐसे तिलक लगाएंगे। तिलक की शेप बदलते सुदर्शन चक्र ने गर्दन काटनी शुरू कर दी, रावण मारा गया, हिरण्यकश्यप मारा गया, जब तक ये मारे नहीं जाते अगर इनका तिलक ऐसे रहता, क्योंकि ये विष्णु तिलक है, इसमें विष्णु भगवान की शक्ति है, तो ये कोई साधारण नहीं है तिलक लगा लिया। अच्छा अच्छा पंडित जी हैं, पंडित जी नहीं है, विष्णु के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है जिसने तिलक लगाया है। हाँ, जैसे मेडिकल रैप होता है ऐसे ही ये विष्णु रैप है। हाँ, सोचिए आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विष्णु। तो एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये अलग अलग गुणों में होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं, तब वो बोल सकते हैं मैं ब्राह्मण हूं। इसलिए आखिरी शब्द में भगवान ने कहा ब्राह्मणस्य विजानतः, परब्रह्म को जानने के लिए पूर्ण ज्ञानी होना जरूरी है। उसी तरह समस्त वेदों को जानने के लिए वही व्यक्ति जान सकता है ब्राह्मणस्य विजानतः। किसको ब्राह्मण जानेंगे? जिसने जनेऊ धारण किया वो ब्राह्मण। हाँ जी, जिसके पास भगवान ने क्या कहा ज्ञान हो। और पूर्ण ज्ञान क्या है कि श्लोक याद है, पूर्ण ज्ञान क्या है श्लोक याद है, भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ है वो पूर्ण ज्ञानी है। कौन है पूर्ण ज्ञानी? जो अपने को मानता है मैं शरीर नहीं हूं, वो पूर्ण ज्ञानी है। दूसरा, पूर्ण ज्ञान का दूसरा अंश, वो ये जानता है कि आत्मा का कर्तव्य क्या है। क्या इस शरीर को धारण करने के बाद भोग विलास करना, अपने मकान बनाना मल्टीपल स्टोरी, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए प्रयास करना, बच्चों को इंजीनियर बना देना, यही है पूर्णता एक मनुष्य शरीर की, आत्मा की? क्या है पूर्णता? आत्मा का स्वरूप है जीवेर स्वरूप होए नित्यर कृष्ण दास, नित्य कृष्ण का दास जो है ये पूर्णता है। तो दो ज्ञान है, पहला मैं आत्मा हूं और आत्मा का कर्तव्य क्या है, कृष्ण की सेवा। ये जिस दिन जो जान जाएगा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाएगा, ब्रह्म मतलब आत्मा, जो ब्रह्म को जान जाएगा वो ब्राह्मण है। तो इसलिए सच्चा ब्राह्मण बनना है। क्यों? तो आपको ये भगवान कह रहे हैं, अलग अलग कुएं में ज्ञान मत रखो। हा? कि मुझे सरस्वती की पूजा करनी जरूरी है क्योंकि मुझे विद्या चाहिए, तो मैं एक कुएं में चला गया सरस्वती कुआ, फिर मैं दूसरे कुएं पे गया मुझे लक्ष्मी चाहिए दीपावली के दिन तो लक्ष्मी कुआ, मुझे चाहिए शक्ति तो दुर्गा कुआ, मुझे चाहिए भोले बाबा की कृपा तो भोला कुआ। इतने सारे कुओं में भगवान क्या कह रहे हैं, यावनर्थ उदपाने, जितने भी कुओं का ज्ञान, कितने भी कुओं का जल है, सर्वत्र समुलोतोद के, सारा कुछ एक ही जगह पर है अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है। कृष्ण की भक्ति करने पर सभी कुओं की कृपा मिलती है। लेकिन ऐसा होता है क्या? आप अपने जीवन में सोचकर देखिए, सच्चा कृष्ण भक्त जो होगा ना, वो विष्णु का भी दर्शन नहीं करता, जबकि विष्णु और कृष्ण एक ही है, विष्णु और कृष्ण एक ही है। लेकिन कृष्ण और विष्णु में क्या भेद है? कृष्ण भगवान में 64 गुण है। कितने गुण? लेकिन विष्णु में 64 गुण नहीं है, विष्णु में 60 गुण है। इसका मतलब क्या, उनकी योग्यता कम हो गई? नहीं, योग्यता कम नहीं हुई है। कृष्ण ऐसे हैं जैसे आप घर में होते हैं। घर में कैसे होते हैं? घर में पैंट शर्ट नहीं पहनते, पजामा कुर्ता पहनते हैं और लोअर पहनते हैं, कोई निकर पहनता है, माताएं भी अपने सिंपल से कपड़े पहनती हैं। घर में ऑफिस आते हैं तो नया कपड़ा प्रेस वाला एकदम डिजाइनर सूट पहन के आएंगे, साड़ी पहन के आएंगे। तो ऐसे ही भगवान जब घर में होते हैं तो अपने ग्वाल बाल की ड्रेस में होते हैं। घर में कौन देखने वाला है? सब अपने प्रियजन है। लेकिन जब वो सृष्टि को दिखाना चाहते हैं कि मैं हूं भगवान, तो अपने ऑफिस की फॉर्म में आते हैं, तब चार हाथ ले लेते हैं, चक्र ले लेते हैं, चक्र गदा पद्म और सर पे मुकुट धारण कर लिया, ऑफिस है उनका। ऑफिस में वो क्या करते? काम करते, पालन करता, पालन करते संसार का। लेकिन घर में क्या करते हैं? घर में कोई पालन वालन नहीं करते, घर में वो बांसुरी बजाते हैं, अपने बाबा के साथ में खेलते हैं, अपने ग्वाल बाल के साथ मस्ती करते हैं। हम भी तो ये करते हैं घर में जाके। तो भगवान जब अपने घर में गोलोक धाम में रहते हैं तो ऐसी मस्ती करते हैं, जब वो वैकुंठ में आते हैं विष्णु बनकर, तो इस सृष्टि का पालन करते हैं और अपने रूप को परिवर्तित करके विष्णु बना लेते हैं। तो एक जो कृष्ण भक्त है, इतना अनुरागी होता है भगवान का कि वो विष्णु को भी देख, कहता है विष्णु जी मैं जानता हूं आप कृष्ण के अंश है, पर मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं तो कृष्ण का ही भक्त हूं, मैं विष्णु का उपासक नहीं हूं, है ना। तो इसलिए वो कृष्ण के प्रति श्रेष्ठता से भक्ति करता है। तो हमें अनादर किसी का भी नहीं करना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर अब मेरे को जलाशय पता चला तो अब मैं कुएं के जल के अंदर मिट्टियां फेंकने लगूं, रोड़े फेंकने लगूं, उठा उठा के बहुत बड़ी बड़ी ईंटें फेंकूं, बोले ये ले तेरा कुआ बंद हो जाए, ऐसा नहीं। उस कुएं को प्रणाम करें कि आज तक जब तक मुझे जलाशय का रास्ता नहीं मालूम था तब तक मुझे पानी कौन पिला रहा था? ये कुएं पिला रहे थे। तो आप कुएं, आपको मेरा धन्यवाद है, लेकिन पूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर अब इस कुएं की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म जाति वर्ण आश्रम का हो, उसको जल पिलाने की क्षमता जलाशय समुद्र के अंदर ही है। तो कृष्ण समुद्र समान है, जिनकी शरण में आने के बाद कोई व्यक्ति प्यासा नहीं जाता है, जाता है कोई प्यासा नहीं जाता, सबको पानी प्राप्त होने वाला है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि जो ये कर्म कांड है, दान पुण्य, जैसे अभी यहां पर ये चल रहा है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे भक्ति भावना कितनी है? पानी पिलाना है कोई भक्ति भावना? जो पानी पी रहा है या जो पिला रहा है, क्या उसने कभी कृष्ण का स्मरण किया कि ये जो वस्तु है जल, इसका स्वाद कौन है? गीता में भगवान कहते हैं, रसो अपि अस्य हम कौन तू है कुंती पुत्र, जल का स्वाद मैं हूं। तो क्या जल का स्वाद लेते वक्त, लस्सी मजे लेते वक्त उसके मन में ठंडक की एहसास तो हुआ, लेकिन क्या कृष्ण का एहसास हुआ? अगर नहीं हुआ तो उसका यह काम क्या बन गया? कर्म। और उस कर्म का क्या मिलता है? फल। पुण्य कर्म का कौन सा फल मिलेगा? पुण्य। और पुण्य करते वक्त क्या गारंटी है कि ये सही होगा। कुएं में जल कितना होता है? पूरा ऊपर तक लबालब भरा होता है या नीचे तक होता है? अब कई बार जब जल निकालते हैं तो रस्सी में क्या बांधते, बाल्टी या लोटा, छोटी बाल्टी या लोटा। अब आपने डाली अपनी बाल्टी लोटा और रस्सी से लोटा खिसक गया तो क्या होगा? लोटा। अभी दूसरा बाल्टी या लोटा चाहिए ताकि आप अपनी बाल्टी को दोबारा पुनः खींच सके, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब हम कर्म करते हैं कुओं के ऊपर, किसी देवी देवता की उपासना करते हैं या कोई पुण्य कर्म का कार्य करते हैं कि चलो निर्जला एकादशी के महीने में जल पिलाएंगे, लेकिन इस पुण्य कर्म के अंदर अगर गलती हो गई, किसको पता है कि सही मंत्र बोला, सही सेवा हुई, सबकी भावना ठीक थी, सबने सही से उसको स्वीकार किया, भोग लगाया था, तुलसी पत्र डाला था, नहीं अगर कर पाए तो क्या होगा? वैसे ही होगा कि मेहनत भी करी, रस्सी में लोटा भी अंदर डूब गया, पानी भी बाहर नहीं निकला। श्रम एव ही केवलम, भागवत कहती है ऐसे एक व्यर्थ के काम में समय गुजर जाता है और जिसके लिए शरीर मिला है वो हम कर नहीं पाते। इसी जगह पानी पिलाने से ज्यादा अगर कोई ये बोले, पानी पिलाते पिलाते क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन करते हुए अगर पिलाता तो वो भागवत विधि बन जाती। एक माता झाड़ू लगाती है, वो कर्म है, और उस कर्म को भगवत कर्म बनाना है तो उसमें हरि नाम लो। माता कुकिंग करती है तो ये कर्म है, बच्चों के लिए बना रही है, लेकिन वो हरि नाम लेते हुए बनाएगी तो ये भगवत कर्म है। तो उस भक्त कर्म का कोई फल नहीं मिलता, उससे आप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हर एक पुण्य कर्म का फल भी होता है। एक राजा थे, उनकी कथा सुना के समाप्त करूंगा। राजा का नाम था राजा नृग। नृग राजा बहुत ही विशाल महान राजा थे और बड़े ही पुण्य कर्म करने वाले थे। निर्जला एकादशी पर पानी पिलाना, नवरात्रों में भंडारे करना, शनिवार को पूड़ियां बांटना, सब्जियां बांटना, किलो किलो टन टन खर्चा करना, ब्राह्मणों को बुला करके दक्षिणा देना, गाय आदि दक्षिणा में दान देना, ये सब करते थे। एक बार उन्होंने कई हजार गाय एक ब्राह्मण को दान दी। हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, हम आपको दान देना चाहते हैं। ब्राह्मण ने दान लिया गायों का और चल दिया। जब जा रहा था, अभी गाय तो गाय है, एक गाय निकल करके, गाय मीन्स ना, गाय मतलब क्या, भोली। कई लोग कहते हैं जैसे कोई भैंस भी होती है ना, हम बोलते हैं अरे भैंस को हटाओ भैया मार देगी, अरे गाय है, गाय मतलब भैंस को भी बोलते हैं अरे भैंस नहीं गाय है, गाय मतलब जो भोली है, सीधी साधी है। तो गाय को भैंस को भी गाय बोल देते हैं। तो ऐसी गाय थी, भोली थी, वो गाय यू टर्न मारी और राजा की गौशाला में वापिस चली गई। यू टर्न लिया और राजा की गौशाला में वापिस। दूसरा ब्राह्मण आया, बोला राजा आपने हमें दान नहीं दिया, आपने दूसरे ब्राह्मण को दिया। कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1000 गाय तुम्हारे लिए भी दान, ले जाओ गौशाला से। अब वो गाय तो उसमें आ चुकी थी रिटर्न होकर के, वो फिर वो भी ले गए। तो गाय ये लौट कर आया ग्वाला, कहा अरे मेरी तो 999 निकली, एक गायब है, एक और दो। कहा कोई भी ले जाओ। कहा कोई भी कैसे ले जाओ, जो दान मेरे को मिल चुका है ब्राह्मण का कर्तव्य है उसी से संतुष्ट रहना, मैं दूसरा क्यों लूं, फिर तो मेरे ऊपर 1001 का चढ़ जाएगा, मुझे तो वही वाली चाहिए। ढूंढते रहे कहां चली गई, कहां चली, अभी गाय कहां पता चल रही, कौन सी गाय कहां चली गई। उस राजा ने इतना बड़ा पुण्य किया, इतनी सारी गायों का दान दिया, लेकिन इसमें त्रुटि हो गई। इसलिए पुण्य कर्म करते हुए, भंडारे करते हुए क्या त्रुटि कर बैठेंगे कि नरक जाना पड़ेगा? जी कौन गारंटी ले रहा है कि सही किया है? इसको बता सकता है कोई रजिस्टर्ड वे? त्रुटिपूर्ण होता है। कुआं में बाल्टी छूट गई, लोटा छूट गया, तो मेहनत भी करी और गया काम, समय बर्बाद। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि काम गलत है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण होगा इसकी कौन गारंटी लेगा सही है, त्रुटि से भरा हुआ है, त्रुटि रहित है। वो राजा को अगले जन्म में क्या बनना पड़ा? हाँ क्या बनना पड़ा? एक विशाल छिपकली बनना पड़ा। और छिपकली बनकर के वो राजा को जब ये पता चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा कब तक मुझे छिपकली बनना पड़ेगा? कहा तब तक जब तक कि भगवान कृष्ण से आपका संबंध ना जुड़ जाए। उन्होंने कहा अच्छा भगवान कृष्ण से? तो जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहते थे, ये द्वारका जहां से हम आते हैं, ये वाला नहीं गुजरात वाला, तो द्वारका में जब भगवान रहते थे तो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि और उनकी संतान सारे अब खेलने जाते थे। बच्चे खेलते खेलते कुएं के अंदर देखा था एक विशाल छिपकली जो पूरे कुएं को कवर करके लेटी थी, इतनी बड़ी छिपकली लेटी थी। कहा अरे पिताजी एक बहुत बड़ी छिपकली है। भगवान तो जानते हैं, भगवान आए और उनको स्पर्श किया, स्पर्श करने से वो क्या बन गए वापस, लेकिन कितने करोड़ों वर्षों तक सांप वो छिपकली बनकर पड़े रहे। क्या किया था उन्होंने? गलत काम किया था, शराब पी थी, मांस खाया था, पुण्य कर रहे थे जी, लस्सी पिलाते पिलाते कब नरक छिपकली बन जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भागवत नहीं है, भगवान नहीं है, वो कर्म पूर्ण नहीं है। कृष्ण के बिना सारे कर्म अपूर्ण है। जो काम करो, यद करोशी यद जहोसी, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, मुझे अर्पण करके करोगे तो वो पूर्ण है, अन्यथा वो अपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। हरे कृष्णा।